તારીખ 19/9/1991 શ્રી સમયસર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 36
આજ પર્યુષણ પર્વ કા સાતમા દિન ઉત્તમ તપ ધર્મ કા દિવસ આપકો બોલા જાતા હૈ દસી ધર્મ કી વિશેષતાએ હૈ ઔર દસો વિશેષતાએ એક ધર્મ કી મુખ્યતયા ચારિત્ર કે અનુસંધાન મેં આચાર્ય મહારાજ ને બતાઈ હૈ ઉત્તમ મેને સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન પૂર્વક સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન પૂર્વક ચારિત્ર હોતા હૈ ચારિત્ર કભી બિના સમ્યક દર્શન બિના સમ્યક જ્ઞાન કભી ચારિત્ર નહીં હોતા વર્તમાન મેં જો ભી જૈન નામ કે સંપ્રદાય હૈ જીતને ભી હૈ ઉસમેં તપ કા મહત્વ પ્રચલિત હૈ બહુત પ્રચલિત હૈ પરંતુ વાસ્તવ મેં તપ ક્યા હૈ નિશ્ચય તપ ક્યા હૈ સચ્ચા ખરા તપ ક્યા હૈ ઇસકી જાણકારી ભી બહુત કમ લોગો કો હોગી સિર્ફ અનશન આદિ કરતે હૈ ઉપવાસ આદિ કરતે હૈ ઉનકો સચ્ચા તપ માન લેતે હૈ ધર્મ બુદ્ધિ સે કરને મેં આતે હૈ તો ચારિત્ર મોહ તો એસે પરિણામો મેં મંદ હોતા હૈ લેકિન દર્શન મોહ કી ક્યા સ્થિતિ હૈ ઇસ વક્ત ઇસ પર કિસી કા ધ્યાન નહીં હૈ એસા દેખા જાતા હૈ વાસ્તવ મેં જો તપ હૈ વો સ્વરૂપ મેં તીવ્ર સ્થિરતા અધિક સ્થિરતા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિરતા હોને હોતા હૈ ઉસી કો તપ કહેતે હૈ પ્રતપન પ્રતપન શબ્દ મેં સે વો તપ આયા હૈ પ્રતપન મેને અચ્છી તરહ તીવ્ર રૂપ સે સ્વરૂપ મેં લીન હો જાના ધ્યાનસ્થ હો જાના ઉસી કો વાસ્તવ મેં તપ કહેતે હૈ ઔર મુનિરાજો કો યે તપ હોતા હૈ ચતુર્થ પંચમ ગુણ સ્થાન વર્તી શ્રાવક કો મુખ્ય રૂપ સે એસા તપ નહીં હોતા જગન્ય રૂપ સે હોતા હૈ ગૌણ રૂપ સે હોતા હૈ ઉસી કો નિશ્ચય તપ કહેતે હૈ ઔર અનશન આદિ 12 પ્રકાર કે 6 અભ્યંતર ઔર 6 બાહ્ય એસે કહે હૈ લેકિન સભી બાહ્ય હી હૈ ઔર સભી વ્યવહાર તપ હૈ યે વ્યવહાર તપ કે 12 ભેદ હૈ ઉસકો વ્યવહાર તપ કહેને મે આતા હૈ મેને ઉસ ઉસ પ્રકાર કા શુભ રાગ ઉસમે હોતા હૈ ઔર ફિર લીનતા હોતી હૈ ઇસલિયે ઉસકો વ્યવહાર તપ ગિનને મે આયા હૈ પદ્મનંદી આચાર્ય દેવ ઉત્તમ તપ ધર્મ કા વર્ણન કરતે હૈ 98 શ્લોક ઇસમેં લિખા હૈ કર્મ મલ વિલય હેતોઃ બોધ દશા તપ્યતે તપઃ પ્રોક્તમ તદ દ્વેધા દ્વાદશધા જન્માંબુધિય જ્ઞાન પાત્રમ ઇદમ સમ્યક દર્શન ઔર સમ્યક જ્ઞાન પૂર્વક કે ઉત્તમ તપ યહ સંસાર સમુદ્ર સે પાર હોને કે લિયે જહાજ સમાન હૈ સમ્યક જ્ઞાન રૂપી દ્રષ્ટિ સે વસ્તુ સ્વરૂપ કો જાન કરકે મેને આત્મ સ્વરૂપ કો જાન કરકે आत्म सुख में, आत्मानंद में लीन होने से सभी प्रकार की इच्छाओं का अभाव हो जाता है, उसी को तप कहने में आया है। तप का सूत्र दिया है उमा स्वामी महाराज ने, जो श्वेतांबर दिगंबर दोनों को मान्य है, इच्छा निरोध तपः। तप की क्या परिभाषा की? इच्छा निरोध तपः, इच्छा का स्वयं बंद हो जाना। आत्मा के आनंद में साधक जीव धर्मात्मा लीन हो जाता है तो वितराग भाव के सद्भाव में किसी प्रकार का राग मैंने इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती, स्वयं उत्पन्न नहीं होती। स्वयं मैंने हट करके, जिद करके, दबाव डाल करके नहीं इच्छा को रोकना पड़ता है, इच्छा होती ही नहीं, उसको इच्छा निरोध तप कहने में आया है। ऐसे तप से निर्जरा है, नहीं खाने से निर्जरा है, आहार नहीं लेने से निर्जरा है, सो बात नहीं है। तो सही तप का स्वरूप बिना जाने सिर्फ आहार ग्रहण नहीं करे, उसको तप माने और धर्म माने और निर्जरा माने, तो वहाँ मिथ्यात्व का बड़ा दोष उत्पन्न होता है। चारित्र का परिणाम में चारित्र मोह कुछ मंद होता है, सामान्य मंद होता है, और दर्शन मोह तीव्र ग्रहित मिथ्यात्व रूप हो जाता है, बड़ा दोष आ जाता है। इसलिए बिना समझे किसी भी परिणाम को या किसी भी बाह्य क्रिया को तप मान लेना चाहिए नहीं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक करना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होवे और उपवास करने का भाव होवे तो साथ ऐसा अभिप्राय और समझ रखना कि ये तप नहीं है परंतु मात्र मेरा अल्प शुभ भाव है, इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। क्यों भूख नहीं लगती? क्या इच्छा क्यों नहीं होती है? भूख लगे तो इच्छा होवे ही, और बीमारी होवे, पेट पेट या लीवर में खराबी होवे तो इच्छा, भूख नहीं भी लगे इच्छा नहीं भी होवे है? नहीं, नहीं आता है। शुद्ध आत्मा के अवलंबन से जो इच्छा का निरोध होता है, या आत्मा का आनंद अमृत का भोजन लेते हैं इसलिए भोजन की इच्छा नहीं होती, क्या धर्मात्मा को आत्म शांति और आत्मा का आनंद का भोजन मिलता है? आनंदामृत नित्य भोजी निर्जराधिकार में कहा, ऐसा परिणमन होने से आहार का विकल्प नहीं उड़ता, उसको तप कहते हैं। ऐसे कभी मुमुक्षु को भी स्वाध्याय की इन दिनों में तीव्र भावना होवे और स्वाध्याय में अधिक काल निर्गमन करें, और स्वाध्याय करने के रस के कारण खाने का रस नहीं होवे और नहीं खावे या आहार नहीं लेवे तो ये शुभ भाव रूप है, ऐसा जानकर, इससे ज्यादा उसको धर्म या धर्म साधन नहीं जानकर उपवास करे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सही समझ पूर्वक जो भी काम है वो अपनी यथार्थ समझ पूर्वक होना चाहिए, ऐसे बिना समझे कुछ भी करे तो लाभ नहीं होता है, उसमें नुकसान ज्यादा होता है। जी ये तो उसमें तो शुभ भाव भी नहीं रहता है, संप्रदाय में ऐसा हमने दिखा है। कुछ साल पहले हम पर्युषण में कलकत्ता गए थे, तो वहाँ ऊपर के मजले में हमारा वो स्वाध्याय वगैरह का कार्यक्रम चलता था, तो स्वाध्याय पूरा होने के बाद हम नीचे जब उतरे तो ग्राउंड फ्लोर में कुछ 8-10 आदमी सोए हुए थे। करीब 10, 10:30 का समय होगा, तो ये कोई सोने का तो समय नहीं है। आदमी या तो दोपहर को आराम करता है खाना खाने के बाद 1:30, 3, 2 बजे, या तो रात्रि को सोता है, लेकिन 10 बजे, 10:30 बजे कोई सोने का तो वक्त होता नहीं। और ये भी मंदिर की प्रीमाइसिस में कोई सोवे, ये बात तो अच्छा भी नहीं लगे। तो हमने फर्स्ट टाइम वो देखा, पहले देखा कि ऐसा कैसे। हमने पूछा तो ये लोग इधर क्यों सोए हुए हैं, तो कि ये उपवासी लोग हैं। अभी 10 बजे में कितनी भूख लगी तो उसे आराम करने का चालू कर दिया, तो ये तो शुभ भाव भी नहीं है। उपवास करे, सो जाए, या टीवी देखे, या पिक्चर देखे, या कुछ ताश खेले, कोई भी गेम खेले, दुकान पे चले जाए, व्यापार धंधा पे चले जाए, नौकरी पर चले जाए, ऐसा उपवास करके तो करना ही नहीं चाहिए, उसमें तो पाप ज्यादा होता है। और कुछ नहीं करे तो भी 12 बजे या कभी भी भूख लगे और मैंने नहीं खाया, ऐसा रटन चल जावे, मुझे नहीं खाना है, मेरा उपवास है, तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे खाना ही नहीं है, ये परिणाम भी आकुलता के है, इससे भी पाप लगता है। मैंने परिणाम पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिणाम कौन से होते हैं। परिणाम बिगड़ जावे, अशुभ हो जावे, या मिथ्यात के हो जावे, और हम नहीं खाने से धर्म माने, बड़ा नुकसान है ये, ऐसा तो कभी करना नहीं चाहिए जी। उपवास मुमुक्षु जीव को उपवास करने का भाव होए तो सारे दिन तत्वज्ञान के प्रवृत्ति में रहना उनके लिए अच्छा है। और मैंने उपवास किया है ऐसा अहम भाव नहीं हुए, इसकी सावधानी रखनी चाहिए, वरना मैंने 1 उपवास किया, मैंने 2 उपवास किया, मैंने 8 उपवास किया, ऐसा गर्व अहम भाव अभिमान आए बिना नहीं रहेगा, ये भी पाप के परिणाम है। हाँ तो किसको दुख होता है, उपवासी को? अभी हम अभक्ष आहार बेचने वाले के वहां खरीदी करने को नहीं जाएगा, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी दुकान पर कभी आता ही नहीं है। हाँ, क्या हमको दूसरे को राजी रखने के लिए धर्म करना है क्या? हाँ, तो उसको अच्छा लगाने के लिए हमें कुछ प्रवृत्ति करना चाहिए। क्या हम कोई खुशामत खोर है क्या, कि सबकी हम खुशामत करते फिरे, क्या बात है? हाँ, धर्म में ऐसा नहीं चलता, उसको अच्छा लगाओ, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जिसको जैसा लगे सो लगे, हम हमारे रास्ते से विचलित नहीं होवे, हम सही रास्ते पे चले, सही रास्ते पे चलते चलते किसी को कुछ लग जाए तो ये उसमें हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं है, ऐसी बात है। एक तो उपवास करने वाला समझता नहीं है, गृहित मिथ्यात्व को पालन करता है, दृढ़ करता है, पोषता है, और हम उसकी साता पुछ करके उसको दृढ़ कर देवे, उसको अच्छा लगा के है, हमको भी अनुमोदना का दोष लग जाएगा। उसको तो गृहित मिथ्यात्व होगा और हमको भी गृहित मिथ्यात्व हो जाएगा है? हाँ, धन्यवाद देते हैं गला फाड़ फाड़ करके, तो उनको ज्यादा तीव्र मिथ्यात्व होता है, तीव्र भाव से तीव्र मिथ्यात्व हो जाता है, क्या फायदा इससे। देखिए, पैसे में तो हम सगा भाई की भी शर्म नहीं रखते, पैसों का मामला होता है ना संसार में, तो सगे भाई का भी हम शर्म नहीं रखते, बोलता कि 10,000 हमको चाहिए, वापिस करवा देंगे, तो कहीं हमको विश्वास नहीं है, तुम वापिस नहीं करो तो फिर हम झगड़ा में क्यों पड़े, अगर तूने व्यापार में खो दिया तो कहां से वापिस करोगे, अगर तेरे भाव देने का होगा फिर तुमको नुकसान हो गया तो कहां से वापिस करोगे। सगे भाई की भी शर्म नहीं रखता है, क्योंकि थोड़ा नुकसान जाता है उसमें पैसे का, और इसमें भाव भ्रमण बढ़ जाता है तो उस नुकसान को नहीं देखता है, उसमें तो वेवाई है, उसको अच्छा नहीं बुरा नहीं लगना चाहिए, अपना बहनोई है, अपना जवाई है, अपना लड़का है, अपना भाई है, वो है, पिता है, ऐसा मान मान करके अनंत काल गवाया है, परिभ्रमण किया है। धर्म में किसी की शर्म रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म शर्म नहीं रखते हैं, कर्म बंधन होता है वो भी हमारी शर्म नहीं रखते हैं, वो तो बंध जाते हैं, जैसे परिणाम करेंगे ऐसे बंधेंगे ही, तो उसमें हमारा सही रास्ता सच्चा रास्ता हो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हैं, संजोग वसात मैंने शर्म खा करके, कौन सा कारण बताइए ना, कोई कारण बताइए बताने लायक हो तो। हैं, हैं, व्यवहार के शर्म पहुंचती है ना, और क्या है इसमें है? अच्छा, तो भावमान निषेध हो तो जरा वहां जाकर प्रकट कर देना, क्या वहां जाकर प्रकट कर देना कि देखिए भाई मेरे भाव में तो निषेध है, मैं आया हूं लेकिन मेरे भाव में निषेध है, तुम बुरा मत मानिए, और सही रास्ता कुछ और है, सही बात कुछ और है, तुम समझते हो बात कुछ और है, तो मैं आया हूं तो थोड़ी दो बात करके जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना स्नेह है, उतना अनुराग है, तो दो अच्छी बात है, दो सच्ची बात है, मैं तुमको बताकर चला जाऊंगा। हैं, दुख लगे तो नहीं करना, किसी को दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति हमें जान बुझ करके नहीं करनी है, है? ऐसा है कि संसार में भी हरेक की कोई न कोई प्रतिष्ठा या इंप्रेशन बनती है, जब समाज में ये मालूम पड़ जाता है कि इनका रास्ता कुछ अलग है, और धर्म के विषय में हमारे से उनकी समझ भी कुछ अधिक है, वो ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा उसमें माथा डालते हैं, तो हमारे लिए वो बुरा नहीं मानेगा, जब हमारी यही छाप है कि हम भी एक धार्मिक सज्जन हैं और हम भी इसकी गहराई में गए हैं, और हम इसका जो सच्चा खोटा क्या है वो सब अच्छी तरह जानते हैं, और हम कोई कार्य में शामिल नहीं होंगे तो ऐसे समझ लेंगे, वो जान सोच समझ कर नहीं आते हैं, इसके लिए हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और आप कहीं भी नहीं जाओ, फिर भी आपका जो लौकिक व्यवहार है वो बिल्कुल दूसरे से भी बढ़िया होगा, कौन बुरा मानेगा। हमारे ऐसा एक केस बना था, तो वो आदमी को ऐसा लगता कि ये धर्म की विरुद्धता होती है। कांजी स्वामी वाले हैं, दिगंबर थे, अपने दिगंबर में कुछ विरोध हुआ तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उनको, वो व्यापारी था, उनके यहाँ खरीद करने को गए। दूसरे भी बहुत व्यापारी थे लेकिन इनके यहाँ ही खरीद करने को गए, तो उनको ऐसा लगा कि हम तो विरोध करते हैं और वो तो हमारे यहाँ हमको व्यापार कराने को आते हैं, ग्राहक बन के आते हैं। तो थोड़ा वो नरम तो हुआ, क्योंकि उनका तो, उनको तो लाभ होता है। फिर तो हमने पूछा कि क्या भाव में दोगे, ये आप किस भाव में बेचते हो? तो कि मेरा भाव तो ये है लेकिन आपके लिए कुछ कम करूँगा। तो मैंने कहा मैं कुछ कम करवाने को नहीं आया। क्या बोले? आप जो भाव में बेचते हो, जो भी आपका मुनाफा है वो आपको लेना है, मेरे लिए कुछ कम नहीं करना है। अभी कौन ग्राहक ऐसा बोलेगा? तो उनको ये लगा कि इनका व्यवहार तो दूसरों से अच्छा है। ग्राहक आएगा वो तो भाव कम कराएगा, और ये ग्राहक ऐसा है कि भाव कम करने को ना बोलता है। तो इनका ऐसा इंप्रेशन हुआ कि नहीं, हम विरोध करते हैं, हम द्वेष करते हैं, लेकिन वो तो एक द्वेष का उसको कोई अंश भी नहीं दिखता है, वो तो ज्यादा स्नेह रखने की बात हो गई। फिर उनको जरूरत हुआ तो उनका थोड़ा संकोच छूट गया, उसको पैसे की जरूरत हुई, तो उनको मामूली रकम है, थोड़ा ब्याज पर मिल सकती है क्या? हाँ, क्यों नहीं देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे, ब्याज क्या लोगे? तो उस वक्त जो चलता था 15%, हमने बोला कि 15%, लेकिन नहीं नहीं बाजार में तो 18% कम नहीं मिलते हैं। मैंने कहा नहीं, आपका तो 15% ही लेना है, हम ज्यादा नहीं लेंगे, फिर क्या होगा? उनका जितना भी विरोध था सब खत्म हो गया कि इन लोगों का व्यवहार ही कुछ दूसरे ढंग का है। तो वैसे अपने व्यवहार से उनका जो इम्प्रेशन है वो बदल जाता है, लेकिन हम व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे तो पहले तो बाह्य दृष्टि में तो सब व्यवहार ही देखते हैं, बाद गहराई में जाके उसमें कौन सा धर्म में क्या गहराई की क्या चीज है वो तो बाद में पता चलता है। आज वो अपना इतना ठोस मुमुक्षु है, इतना ठोस मुमुक्षु है, तो पश्चाताप कर देगा, हमने बहुत विरोध किया है, संप्रदाय के कारण से हमने बहुत विरोध किया था, बहुत गलती किया था, इतना अच्छी बात है हम समझ नहीं सके, ये नहीं करना चाहिए था। तो आज वो दूसरों को समझाते हैं अपने संप्रदाय में, ये बात हो गई है। तो ऐसी बात है कि व्यवहार जब अपना अच्छा है तो कोई बुरा मानने वाला नहीं है, हम द्वेष करेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, हम सज्जनता रखेंगे और सामान्य सज्जनता से कोई विशेष सज्जनता का व्यवहार करेंगे तो किसी को बुरा लगने का कारण नहीं होता। ये तो थोड़ा विषयांतर हो गया किशोर भाई साता पूछने के बारे में। अरे संप्रदाय की बात छोड़ो, अपने मुमुक्षु समाज में भी लोग उपवास आदि करते हैं और संप्रदाय की तरह उसको तप के क्या, फिर 8 दिन के बाद तप, 8 दिन का तपवास करे फिर क्या करते हैं? सब प्रकार के वो धांधल धमाल करने लग जाते हैं, हैं? ये हमारे लिए तो ठीक नहीं है। गुरुदेव ने उतनी बात समझाई है, धर्म क्या है, शुभ भाव क्या है, धर्म साधन क्या है। जो धर्म साधन नहीं है उसको धर्म साधन मान लेते हैं, व्यवहार से जो बोलने में आते हैं उसको खराब मान लेते हैं, उसमें कितनी भूल होती है, कैसे मिथ्यात होता है, सब समझाया है, फिर भी हम लोग भूल करते हैं। तो दूसरों की तो भूल होवे ही, जिसने बात सुनी नहीं उनकी तो भूल हो ही जावे, उसके लिए हमें क्या अफसोस करना है। तो ये बात हुई तप के विषय में। अब जो है चलता अधिकार है, समय सार, संवर अधिकार, 181, 82, 83 गाथा की टीका चलती है। संवर मैंने धर्म, संवर मैंने आत्मा की बीतराग दशा, राग द्वेष रहित दशा, शुभ अशुभ परिणाम रहित दशा, पवित्र दशा, उसको शास्त्रीय परिभाषा में संवर कहने में आता है। ये आत्मशुद्धि है। क्या है वो? संवर है, वो आत्मशुद्धि है। ऐसी आत्मशुद्धि कैसे उत्पन्न होती है, इसकी चर्चा चल रही है टीका में। तो आचार्य महाराज ने ये कहा कि भेद विज्ञान से संवर होता है। भेद विज्ञान संवर का कारण है या भेद विज्ञान धर्म का कारण है? प्रथम धर्म, पहली शुरुआत धर्म की शुद्धोपयोग से होती है, और वो शुद्धोपयोग होने का कारण भेद विज्ञान की प्रक्रिया है। इसलिए आचार्य महाराज भेद विज्ञान कैसे करना, किससे करना, इसका विस्तार करते हैं। तो ये कहा कि रागादि भाव से, कर्म से और नो कर्म से भेद विज्ञान करना। भेद विज्ञान करना मैंने क्या, कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन आनंद आदि मेरा स्वभाव स्वरूप है, और रागादि मलिन परिणाम मेरा स्वभाव स्वरूप नहीं है, और कर्म नो कर्म नानावरणी आदि कर्म शरीर आदि नो कर्म, कर्म के फल उसको नो कर्म कहते हैं, ये सब जड़ है, पुद्गल है, चैतन्य स्वरूपी नहीं है, इसलिए मेरा नहीं है, मैं इससे भिन्न हूं। ऐसा भेद विज्ञान करना वो संवर है, संवर का कारण है। जैसे उपवास की बात चली तो जो परमाणु पुद्गल है, जड़ है, उससे आत्मा चैतन्य स्वरूपी भिन्न है, तो भिन्न पदार्थों में कर्ता कर्मपणा नहीं होता। तो आहार ग्रहण करते वक्त भी इसका भिन्नपणा अनुभव में लेना चाहिए या अनुभव करने का प्रयास होना चाहिए, और त्याग करने का विकल्प हो तभी भी भिन्नपणा को मुख्य रखना चाहिए। न तो मैं ग्रहण कर सकता हूँ, न तो मैं त्याग कर सकता हूँ। ग्रहण करता हूँ वो भी मिथ्यात्व है, और त्याग करता हूँ वो भी मिथ्यात्व है। ऐसा जान करके विकल्प होता है तो इस विकल्प का निषेध आएगा, लेकिन वस्तु स्वरूप का तो ज्ञान होवे नहीं। और ग्रहण त्याग में, ग्रहण त्याग कर सकता हूँ ऐसा मान लेवे तो गृहित मिथ्यात्व हो जाएगा, तीव्र मिथ्यात्व हो जाएगा। तो ऐसा भेद विज्ञान अच्छी तरह हो सके, इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर विशेष समझाते हैं। जो दूसरा पैराग्राफ है यहाँ से बात चलेगी, आगे तक हो चुका है। पुनः विशेष समझाने में आता है, जो बात कही उसको कुछ अधिक स्पष्टीकरण के रूप में समझाते हैं दृष्टांत युक्ति दे करके। जब एक ही आकाश को अपनी बुद्धि में स्थाप करके आकाश का आधार आधे भाव को विचार करने में आता है, तब आकाश को बाकी के अन्य द्रव्यों में आरोप करने का निरोध हो जाने से, अर्थात अन्य द्रव्यों में स्थापित करना अशक्य हो जाने से, बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा उत्पन्न नहीं होती, प्रभावती इनमें उत्पन्न नहीं होती। यानि वो उद्भवती नहीं, स्थापित नहीं होती या अनुकूल नहीं होती। क्या कहते हैं, आकाश का एक दृष्टांत लिया है। आकाश नामक एक अरूपी पदार्थ है, भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में आया हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र वाला पदार्थ है। किसका कितना क्षेत्र है इसका, कि जिसका कोई अंत नहीं होवे उतना। चारों दिशा में कितना भी ज्ञान को लंबाओ, आकाश का अंत नहीं है। चार दिशा, चार विदिशा, विदिशा मैंने कोना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा है, अग्नि ईशान वायव्य नैऋत्य ये इसके कोने हैं, चार चार आठ, और ऊपर नीचे दसों दिशा। दसों दिशा में आकाश इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि कहीं इसका अंत नहीं है। इतना कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं। तो आधार दे नहीं सकता, इससे बड़ा वाला तो उससे आधार देगा ने, तो कहीं जगह भी नहीं बाकी रही दूसरा पदार्थ के लिए, कोई अवकाश ही नहीं, खाली जगह ही नहीं। कोई दूसरा पदार्थ के आधार से विश्व में आकाश नहीं रहा है, इसलिए भिन्न दूसरे पदार्थ के आधार की अपनी बुद्धि में कोई अपेक्षा उत्पन्न नहीं होती। मैंने अच्छी तरह यह समझ में आता है कि विश्व में आकाश इतना बड़ा पदार्थ है कि उसको कोई किसी का आधार नहीं होते हुए स्वयं पूरा पूरा क्षेत्र में वो व्यापक रूप से ये पदार्थ रहा है। तो जब ऐसा हमारी समझ में ठीक तरह आता है आकाश के बारे में, तब एक आकाश ही, एक आकाश में ही प्रतिष्ठित है, ऐसा बराबर समझ में आ जाता है। आकाश का स्वरूप कैसा समझ में आता है, कि पूरा आकाश, महान आकाश, आकाश में रहा हुआ है। इसको आधार देने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे हम तो देखते हैं ये सूर्य चंद्र तारागण है, देखते हैं ना ऊपर, किसका आधार है उसको ना? किसी का आधार से वो देखने में नहीं आता है कि किसी का आधार है उसको, स्वयं अपने आप के आधार से वो परिभ्रमण करते चलते हैं आकाश में। तो किसी को किसी का आधार होना ही चाहिए, ऐसे हमें भी किसी का आधार होना ही चाहिए, ऐसी अपेक्षा हमें छूट जानी चाहिए। दूसरे के आधार में बुद्धि में पराधीनता पैदा होती है, और जिसकी बुद्धि पराधीन है उसको पराधीनता में सुख नहीं मिलता। आज तो हम देखते हैं, गरीब हो, मजदूर हो, नौकरी करने वाला नौकर हो, चाकर हो, कोई भी हो, ऐसा कहेगा कि हम पराधीनता से काम नहीं करेंगे, हमारी स्वाधीनता का जो हक है वो सुरक्षित रहने चाहिए। चलता है कि नहीं, स्वाधीनता का अभियान चलता है। और वैसे दो भाई होते हैं, एक पैसा वाला होता है, दूसरा के आमदनी खास नहीं होती या बेकार भी कभी हो जाता है। एक परिवार में जॉइंट फैमिली में रहता है, जो ज्यादा कमाता है वो नहीं कमाने वाले को दबाता है, कभी बड़ा हो या छोटा हो कुछ भी हो, बनता है कि नहीं बनता है, क्या कहेगा वो, हम सूखी रोटी खाएंगे, घी नहीं मिलेगा तो सूखी रोटी खाएंगे, सब्जी नहीं मिले तो नमक के साथ खा लेंगे या मिर्च के साथ खा लेंगे या पानी के साथ खा लेंगे, लेकिन हमें तुम्हारी परतंत्रता नहीं चाहिए। क्या बात है, अनुकूलता को छोड़ने को तैयार होता है आदमी, लेकिन परतंत्रता को वो सहन करना नहीं चाहता। तो तीर्थंकर देव का मार्ग भी स्वतंत्रता का है। ये तीर्थंकर देव का उपदेश है, जैन परमेश्वर का उपदेश को आचार्य महाराज तो उनके एजेंट है, माल बेचने वाले। तीर्थंकर देव का माल देते हैं अपने को कि तुम स्वतंत्र हो, जैसा आकाश स्वतंत्र है इस विश्व में, ठीक वैसा का वैसा तुम भी स्वतंत्र हो। हम तुम्हारी स्वतंत्रता को दर्शाते हैं, तुम्हारी स्वतंत्रता को प्रसिद्ध करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और तुम्हें क्या उसमें बुरा लगता है? तुम्हारी परतंत्रता को हम कहे तो तुमको बुरा लगे, वो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता तुमको क्यों नहीं जचती है? कोई विचित्र बात होती है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो ये मार्ग स्वतंत्रता का है। गुरुदेव को ये विषय बहुत प्रिय था, ऐसा कहते थे कि सारे जगत में सभी प्राणी मिथ्या अभिप्राय, अज्ञानवश, मिथ्यात्ववश परतंत्र जीवन गुजारते हैं और परतंत्रता में खुशी रहते हैं। कर्म की पराधीनता, कर्म के उदय की पराधीनता, अरे धर्म में भगवान की, ईश्वर की पराधीनता, ईश्वर को ऐसे मान लेते हैं, जो खुदा को माने, ईश्वर को माने, सब पराधीनता मान लेते हैं। उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है मानने वाले के, उसके सामने ये सारे विश्व के अभिप्राय के सामने ये स्वतंत्रता का ढंढेरा है, ऐसा कहते थे। क्या है ये बड़वा होता है ना, बड़ी सत्ता के सामने ये स्वतंत्रता का बड़वा है। हिंदी में क्या कहते हैं बड़वा को, क्या कहते हैं है? क्रांति, विद्रोह। सारे जगत के मान्यता के सामने एक बड़ा विद्रोह है कि तुम स्वतंत्र हो, एक परमाणु भी स्वतंत्र है, प्रत्येक परमाणु भी स्वतंत्र है, तेरे अधीन नहीं, और प्रत्येक जीव भी स्वतंत्र है, किसी किसी के दबे हुए या पराधीन नहीं है, और इसमें ही सुख है, स्वाधीनता में ही सुख है, पराधीनता में, स्वप्न में भी सुख नहीं होता। तो उस तरह आकाश के विषय में जब अच्छी तरह समझ में आता है तो आकाश के विषय में समझने वाले को आकाश को दूसरा आधार है ऐसा आधार आधेपणा भाषित नहीं होता। ये दृष्टांत है, सिद्धांत अब कहते हैं। उस तरह जब एक ही ज्ञान में, देखिए यहां समझने की पद्धति प्रयोगात्मक रखनी है, सिर्फ विचारात्मक नहीं। क्या स्वाध्याय में जब शब्द आता है शास्त्र का, हमारे सामने वाचक शब्द आता है, हमें उस शब्द के वाच्य को ग्रहण करना है, सिर्फ शब्द को नहीं ग्रहण करना है, न शब्द के अर्थ को सिर्फ ग्रहण करना है। लेकिन शब्द से अर्थ समझ में आता है तो अर्थ से आगे जाकर के पदार्थ को ग्रहण करना है। इस ढंग से स्वाध्याय की पद्धति होनी चाहिए। अभी ये अच्छा मौका आया है, किस तरह स्वाध्याय करें। हमेशा करते हैं ना हम लोग साथ में बैठ करके घंटा भर स्वाध्याय करते हैं, किसी न किसी शास्त्र लेकर को बैठते हैं, तो किस तरह करना चाहिए कि देखिए ये बात आई है कि अब एक ही ज्ञान में, तो एक ही ज्ञान में मैंने अपना अकेला ज्ञान को ज्ञान में लेना है। क्या ज्ञान का विचार नहीं करना है? हमारा ज्ञान प्रकट है, हम जीव है, हमको प्रति समय हमारे में ज्ञान का पर्याय उत्पन्न होता है। मैंने पर्याय है वो आंदोलित परिस्थिति है, स्थिर परिस्थिति नहीं है। जैसे घड़ियाल का जो पेंडुलम होता है लोलक, वो चलता है, गतिमान होता है, तो सहज नजर वहां चली जाती है। स्थिर पदार्थ पर इतनी नजर नहीं जाती जो चलित पदार्थ पर नजर जाती है। वैसे हमारे स्वरूप में ध्रुव तत्व है, वो स्थिर है, गुण अनंत गुण का समूह रूप जो ध्रुव है, वो द्रव्य है, वो स्थिर है, और परिणमन है वो चलित अंग है, जीव का वो चलायमान अंग है। उसमें हमारा ज्ञान है, ज्ञान क्रिया जिसको कहा, इधर ज्ञान का पर्याय कहो, ज्ञान की क्रिया कहो, ज्ञान का परिणमन कहो, वो प्रति समय आंदोलित होता है, उत्पन्न होता है, नाश होता है, उत्पन्न होता है, नाश होता है, और इसका हमें अनुभव होता है। क्या होता है? ये प्रकट है और अनुभव गोचर भी है, अनुभव में आता है ज्ञान। उस अकेला ज्ञान को अनुभव में लेकर के हमें तलाश करनी है, हमें देखना है। क्या सिर्फ विचार नहीं करना है, हमें देखना है, अपने ज्ञान में ज्ञान को देखना है, मैंने अपने ज्ञान में स्वयं को देखना है। ज्ञान ज्ञान को देखता, मैंने दूसरे ज्ञान को नहीं। ज्ञान जो पर्याय चली गई उसको देखे वो भी नहीं क्या दूसरे को ज्ञान को तो नहीं देखना है, और जो ज्ञान की पर्याय भूतकाल में हो गई उसको भी नहीं देखना है। क्यों? कि जो भूतकाल में जो ज्ञान की अवस्था हो गई उसको देखने जाएगा तो विचार विकल्प हो जाएगा, देखना नहीं होगा। क्या जैसे आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं देखता हूं, लेकिन मेरे सामने जो नहीं है उसके विषय में मुझे विचार करना पड़ेगा। परोक्ष चीज का विचार करना पड़ता है। जैसे अभी घर में जो भी हमारे घर के सदस्य गण होंगे अभी क्या करते होंगे, ऐसा विचार करें तो घर में हमारे यहाँ अभी रसोई बनती होगी, रसोई करने वाले रसोई कर, तो विचार आता है। और आमने सामने हो तो देखना होता है। तो जो ज्ञान की पर्याय चली गई उसको हमें ज्ञान में नहीं लेना है। प्रयोग क्या चीज है और विचार क्या चीज है, प्रयोग में और विचार में क्या अंतर है, कि एक ज्ञान दूसरा ज्ञान का विचार करे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा भी नहीं होना चाहिए? आप निकालिए, शुरू में ये बात लिखिए, इस शास्त्र के प्रारंभ में जो पहली गाथा है मांगलिक की, इसमें वो बात लिखी है।
नहीं, वो पहला कलश है, मांगलिक कलश है, उसमें वो बात है, श्लोकार्थ में। नमः समय साराय, ये जो पहला श्लोक है उसमें श्लोकार्थ में 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10वीं पंक्ति है। तेमज ज्ञान अन्य ज्ञान थी जाने सकाय छे, पोते पोताने नथी जानतो, एम माननार नैयाई कोनो पण प्रतिषेध थयो। किसका अर्थ हुआ है? स्वानुभूत्या चकासते, इस शब्द का अर्थ चलता है, ये मतार्थ किया है। नैयायिक का जो मत है उससे अलग बात है, ऐसा कहते हैं। एक वेदांत में नैयायिक मत है, जो उसमें न्याय की प्रधानता है, बहुत लॉजिक है, उनके शास्त्रों में लॉजिक का प्रकरण बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका मत का नाम भी नैयायिक है, जो न्याय को अधिकतर से स्थापित करते हैं। तो वो लोग ऐसा मानता है कि ज्ञान अपने को नहीं जानते हैं, एक ज्ञान अन्य ज्ञान को जानता है। तो आचार्य महाराज का वो अभिप्राय नहीं है। स्वानुभूत्या चकासते, मैंने स्वानुभूति में स्वानुभूति करने वाला ज्ञान अपने आप को जानता है, ऐसी बात है। तो हमारा ज्ञान जो चला गया उसको दूसरी पर्याय प्रकट हुई, वो पहले वाली पर्याय को जाने, ऐसी बात नहीं लेनी है। यहां पर क्या बात लिया है कि एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थाप करके, उतना टुकड़ा लेते हैं अब सिद्धांत में, एक ही ज्ञान, मैंने कौन सा ज्ञान, के वर्तमान में जो प्रकट हुआ वही ज्ञान, वर्तमान में जो अनुभव रूप हो रहा है वही ज्ञान, और उसमें ज्ञेय को भी नहीं मिलाना है, उसको एक ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मात्र, ज्ञान में राग को नहीं मिलाना है, ऐसा कहने का अभिप्राय है। शरीरादि संयोग को तो नहीं देखना है, लेकिन ज्ञान में सिर्फ अकेले ज्ञान को ज्ञान में लेना है, वो भी चलता हुआ चालू है, वो नहीं। मियाकार ज्ञान में गेय पर लक्ष्य चला जाता है अनादि से, ये बात हो जाती है। क्या ज्ञानाकार ज्ञान लेना, नियाकार ज्ञान नहीं लेना। ज्ञानाकार ज्ञान ज्ञान का अंतरंग है, और ज्ञाकार ज्ञान ज्ञान का बहिरंग है। हमें बाह्य दृष्टि छोड़नी है, हमें अंतर्दृष्टि करनी है। क्या हमारा प्रयोजन है? अनादि से हमारी बाह्य दृष्टि चली आ रही है, चालू है, उससे बाह्य दृष्टि से हमें धर्म की प्राप्ति, पवित्रता की प्राप्ति, गुण की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति नहीं है। अवगुण की और दुख की प्राप्ति हमें हो रही है। हमको दोष का त्याग करना है तो अंतर्दृष्टि से होगा, बहिर्दृष्टि से नहीं होगा। इसलिए जब हमारे ज्ञान को हम देखते हैं तो भी ज्ञान का बहिरंग को हमें नहीं देखना है, ज्ञान का अंतरंग को हमें देखना है, उसको एक ही ज्ञान कहते हैं। कि अपने ज्ञान में एक ही ज्ञान को ग्रहण करके, मैंने ज्ञान ज्ञान में है ऐसा स्थापित करके, ऐसा स्थापित करना मैंने ऐसा स्वीकार करके, ज्ञान का हम आधार आधे भाव को विचार में लेते हैं या समझ में लेते हैं, विचार में मैंने देख करके समझ में लेते हैं, तर्क करके नहीं, क्या अनुमान करके नहीं, पढ़ करके नहीं, सुन करके नहीं, तर्क करके नहीं, लेकिन देख करके उनको हम समझ में लेते हैं। तब ज्ञान में बाकी के अन्य द्रव्य का आरोप का निरोध ही होने से, मैंने ज्ञान में अन्य द्रव्य दिखने में नहीं आने से, या ज्ञान में अन्य द्रव्य का अस्तित्व अनुभव में नहीं आने से, अन्य द्रव्य का क्या? अकेला ज्ञान में राग का भी अस्तित्व अनुभव में नहीं आने से अनुभव नहीं होता है इसका, अपनी बुद्धि में या समझ में भिन्न आधार की अपेक्षा उत्पन्न नहीं होती। क्या अपने ज्ञान में मेरा ज्ञान को अन्य आधार का जरूरत है? अपेक्षा मैंने क्या जरूरत है ऐसा हमें नहीं लगता, ऐसा भासित नहीं होता कि हमारे ज्ञान को उत्पन्न होने में ज्ञेय की आवश्यकता है। जैसे घड़ा होगा तो घड़ा का ज्ञान होगा, सामने घड़ा नहीं होगा तो घड़ा का ज्ञान नहीं होगा, ये अपेक्षित ज्ञान है। ज्ञान का ऐसा स्वरूप नहीं है, ऐसा कहते हैं आचार्य देव कि तेरा ज्ञान पराधीन नहीं है, परतंत्र नहीं है, तेरे ज्ञान की स्वतंत्रता स्वाधीनता हम दिखाते हैं, तुम अपने आप में झांक करके, क्या सिर्फ तर्क करके नहीं, झांक करके थोड़ा अंदर में झोंक झुकाव करके देख लो, ज्ञान ज्ञान में झुकता है और अपने आप को देखता है तो उसको लगता है कि मेरा ज्ञान स्वयं ही उत्पन्न हो रहा है। तो स्वयं उत्पन्न हो रहा है उसमें शक्ति का दर्शन होता है। अगर मेरे ज्ञान को उत्पन्न होने में दूसरे की जरूरत हो तो ये मेरी अशक्ति है, मेरी शक्ति इसमें नहीं है। स्वतंत्रता तो अशक्ति से होती है, और स्वयं मेरा ज्ञान उत्पन्न होता है तो ये स्वयं उत्पन्न होने में शक्ति को देखने में आता है, ये विशेषता होती है। क्या रिजल्ट आया? ज्ञान ज्ञान में स्वयं उत्पन्न होने की क्रिया को जब देखता है तो स्वयं उत्पन्न होने में स्वयं की उत्पन्न होने की शक्ति है, ऐसा भी देखने में आता है, और शक्ति कभी अधूरी नहीं होती। क्या देखने में आता है? शक्ति का स्वरूप कैसा देखने में आता है? कि शक्ति कभी अधूरी नहीं होती। जैसे एक चिंगारी छोटी है लेकिन आग कितनी भी हो सकती है, शक्ति उसमें बहुत बड़ी है। क्या चिंगारी बिल्कुल छोटी दिखती है लेकिन उसका भरोसा कोई नहीं करते, उसको मिट्टी के तेल, गैस तेल बोलते गुजराती में, मिट्टी के तेल के नजदीक में रखा नहीं जाता, पेट्रोल के पास उसको रखा नहीं जाता। रखते हैं क्या? क्यों? ये चिंगारी है, कितनी बड़ी आग लग जाएगी पता नहीं लगेगा, तो हम वो छोटी है ऐसा उपेक्षा नहीं करते, निग्लेक्ट नहीं करते, शक्ति को जानते हैं वहां कि चिंगारी में भी बड़ी आग लगने का लगाने की शक्ति होती है, छोटी मत जाना उसको, जरा सावधानी से काम लो। कि लाइटर जलाते कि नहीं? लाइटर जलाते हैं, एक सेकंड से भी कम भाग में इसमें से चिंगारी छोटी सी निकलती है, कभी तो दिखे नहीं, इतनी छोटी निकलती है, फिर भी वो एलपी गैस को पकड़ती है, कैसे पकड़ती है? फाक करके जलाता है कि नहीं जलाती है?